इशिका ने डॉक्टर पार्थ रायचंद का प्रोजेक्ट करने से मना कर दिया था, फिर भी पार्थ ने उन्हें वहां से जाने दिया। इशिका के हिसाब से पार्थ का प्रोजेक्ट लोगों की भलाई के बजाय पैसे कमाने का एक जरिया था। पार्थ ने उसकी बातों को इतना सीरियसली नहीं लिया, उसके दिमाग में काफी कुछ चल रहा था। जहां एक तरफ इशिका, अभिमन्यु और केशव वहां से गोवा जाने के लिए निकले, तो वहीं पार्थ भी उनके पीछे जा रहा था। उसे उनसे पहले गोवा पहुंचना था। दूसरी तरफ राधिका और श्रुति गोवा पहुंच चुकी थीं। राधिका और श्रुति इस वक्त सिंघानिया मेंशन के बजाय राजवंश विला में रुकी थीं, क्योंकि अभिमन्यु यही चाहता था कि राधिका वापस सिंघानिया मेंशन ना जाए। राधिका वसुधा के विला में उनके साथ थी। इस बीच उर्वशी उनसे मिलने के लिए वहां पहुंची। उर्वशी को देखते ही वसुधा ने सख्ती से कहा, मिसेस सिंघानिया को डॉक्टर ने स्ट्रेस लेने से मना किया है, उम्मीद है तुम यहां कोई तमाशा लगाने नहीं आई हो। आपको ऐसा क्यों लगता है दादी, मैं कोई सीन क्रिएट करूंगी? मैं तो बस यहां मिसेस सिंघानिया का हाल पूछने आई थी। अगर आपको उससे कोई प्रॉब्लम है तो मैं चली जाती हूं, उर्वशी ने जवाब दिया। वसुधा ने उसके इस इमोशनल ड्रामे की तरफ ध्यान नहीं दिया। उनसे बेहतर कौन जानता था कि राजवंश फैमिली के लोग कैसे थे। उर्वशी वहां से जाने को हुई, तभी राधिका ने उसे रोकते हुए काफी नरमी से कहा, अरे नहीं मिसेज राजवंश, आप बैठिए हमारे साथ, हमें अच्छा लगेगा। उर्वशी ने सिर हिलाया और फिर वसुधा के चेहरे की तरफ देखा। वो उसके वहां आने से कुछ खास खुश नहीं थी। उर्वशी ने धीमी आवाज में कहा, आर यू श्योर मिसेज सिंघानिया, आपको अच्छा लगेगा? क्योंकि दादी को मेरा यहां होना रास नहीं आ रहा। वसुधा ने गहरी सांस ली और वहां से उठते हुए बोली, तुम दोनों बातें करो, मैं वैसे भी टहलने के लिए जा रही हूं। उम्मीद है उर्वशी तुम मिसेस सिंघानिया से आराम से बात करोगी। इतना कहकर वसुधा उठी और अपनी केयरगिवर निवेदिता की मदद से बाहर जाने लगी। जाने से पहले उन्होंने इशारे से एक हाउस हेल्पर को उन पर नजर रखने को कहा। उन्हें उर्वशी पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उर्वशी भी उस पर नजर बनाते हुए राधिका के बिल्कुल पास में बैठी और बोली, आपकी लाइफ में इतना सब कुछ हो गया है, उसके लिए बुरा लग रहा है। आपने अपनी जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं मिसेस सिंघानिया। अपने पति की लाइफ में किसी और औरत का होना क्या होता है, ये मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है? उर्वशी जानबूझकर बातचीत की शुरुआत इमोशनल बेस पर कर रही थी। राधिका ने जवाब में काफी शांत लहजे में कहा, हां लेकिन फिर भी आपकी और मेरी जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है मिसेस राजवंश। मेरे हस्बैंड मालविका के साथ मजबूरी में थे। बात कोई भी क्यों ना रही हो, लेकिन नकुल मिस्टर आदर्श सिंघानिया से कई गुना बेहतर है, ये आप ही जानती है मिसेस सिंघानिया। मैंने सुना था कि आदर्श ने मालविका के साथ मिलकर बचपन में इशिका को बदला था। जो भी हुआ, उनमें दोनों बच्चियों की तो कोई गलती नहीं थी ना? फिर भी उन्हें सजा मिली, पहले इशिका को तो अब आयशा को मिल रही है। उर्वशी बात को घुमा फिराकर आयशा के टॉपिक पर ले आई थी, यही तो उसका मकसद था। आयशा का जिक्र आने पर राधिका की भौहें खिकुड़ गईं। वो हल्की सख्ती से बोली, मिसेज राजवंश बेहतर होगा कि आप उस लड़की के बारे में बात ना ही करें। वो कब से सारा सच जानती थी? उसने हम सबके इमोशंस के साथ खेलकर इशिका को तकलीफ पहुंचाई। मैंने कभी उसे प्यार देने में कोई कमी नहीं रखी। अगर वो मेरे पास आकर सारा सच बताती तो मैं उसकी जिंदगी कभी बर्बाद नहीं होने देती। उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती। राधिका ने गुस्से में अपनी सारी भड़ास निकाल दी थी। उसके जाने बाद से आयशा के बारे में कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि राधिका ने उसे माफ कर दिया था। राधिका की बातों से उर्वशी समझ गई थी कि उसे मनाना आसान नहीं रहने वाला है। उर्वशी ने फिर भी हार नहीं मानी। वो आगे बोली, लेकिन आयशा की इसमें कोई गलती नहीं थी। देखा जाए तो उसकी जगह कोई और भी होता तो अपनी पोजीशन और प्यार छिन जाने के डर से यही सब करता। उसने इशिका की हालत अपनी आंखों से देखी थी। उसे तो यही डर लगता होगा ना कि उसकी हालत भी इशिका की तरह होगी, बस इसी वजह से वो नहीं बता पाई। उर्वशी की बातें राधिका को गुस्सा दिलाने लगी थीं। वो सख्त अंदाज में बोली, अच्छा तो अब आपको उस पर दया आ रही है? आपको अगर वो इतनी इनोसेंट लगती है तो उस वक्त आपने कुछ क्यों नहीं किया जब नक्श ने उसे तलाक दिया था? आप अपना दिल बड़ा करके उसे माफ करती, उसे इज्जत दिलाती, फिर तो मुझे समझ आता कि हाँ हमें भी आयशा को माफ कर देना चाहिए। राधिका ने बातचीत का पूरा रुख बदल दिया था। उसने सारा दोष उर्वशी पर डाल दिया था। अगर आज उर्वशी को आयशा की जरूरत नहीं होती तो वो सच में कभी भी आयशा को माफ करने के बारे में सोचती। उर्वशी की नजरें छुप गई थीं। उसे इस तरह शर्मिंदा होते देख राधिका ने सार्कास्टिकली मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी बड़ी बातें करना आसान होता है मिसेज राजवंश, लेकिन जब आप पर बीतती है तब समझ आता है। आपको आयशा पर दया जरूर आ रही होगी, लेकिन उसकी हरकतों पर गौर करें तो वो किसी भी तरीके से दया के लायक नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैं उसे कभी माफ कर पाऊंगी। अगर आपने आयशा की हालत देखी होती तो आप ऐसा नहीं कहती। वो जो भी हो, आपने उसे अपनी बेटी की तरह पाला था और अब वो पागलखाने में बंद है। उर्वशी ने अपना अगला दाव खेला, ये उसकी कर्मों की सजा है। क्या पता वो लड़की पागल होने का ड्रामा कर रही हो ताकि उसे जेल ना हो। पागलखाने से तो मैं उसे निकलवा दूंगी, लेकिन जेल से उसे ना तो आप बचा पाएंगी और ना ही मैं। उम्मीद है कि इस टॉपिक पर आगे बात नहीं होगी। राधिका ने टॉपिक को वहीं पर क्लोज कर दिया था। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया था कि वो किसी भी कीमत पर आयशा को माफ नहीं करने वाली है। उर्वशी को भी अचानक याद आया था कि अपनी बातों में वो भूल गई थी और वो तेज आवाज में बात करने लगी थी। हाउस हेल्पर कॉल पर मौजूद थी दूसरी तरफ वसुधा ने सारी बातें सुनी तो वो गुस्से से भर उठी। वसुधा वहां निवेदिता के साथ पहुंच चुकी थी। उन्होंने उर्वशी से गुस्से में कहा, मुझे इसका अंदाजा कहीं न कहीं पहले ही हो गया था कि तुम मिसेस सिंघानिया को परेशान करने के लिए ही आई हो। कभी सोचा है कि तुम्हारी बातों का उन पर क्या असर होगा? गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई फायदा नहीं है उर्वशी, बेहतर होगा अपने घर पर ध्यान दो। तुम्हारे पति की नाजायज औलाद इस घर में घर करके बैठी है, तुम उसे माफ करो, अपनी बेटी के तौर पर उसे जगह दो, तब शायद राधिका भी आयशा को माफ करके उसे अपनी बेटी बनाने को तैयार हो जाएगी। वसुधा ने उर्वशी का मुंह अच्छे से बंद करवा दिया था। अब उर्वशी के पास कुछ नहीं बचा था। उर्वशी शायद कभी नकुल को माफ नहीं कर सकती थी, उन्हें उसकी बेटी फूटी आंख तक नहीं सुहाती थी। उर्वशी जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हुई और राधिका से बोली, अगर मेरी बात से आपको ठेस पहुंची है तो मैं माफी चाहती हूँ मिसेस सिंघानिया। मैं बस यहाँ मिसेस सिंघानिया का हाल पूछने आई थी, मानना या ना मानना आप पर डिपेंड करता है। इतना कहकर उर्वशी वहां से जल्दी से चली गई। उसका वहां से जाना ही सही था, वरना अगर वसुधा उसकी क्लास लगाने पर आ जाती तो उसे इस वक्त बचाने वाला भी कोई नहीं था। उर्वशी के जाते ही वसुधा ने राधिका से कहा, उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, अगर कोई इंसान गलती करता है तो उसे उसकी सजा मिलकर ही रहती है। डोंट वरी मिसेस राजवंश, मैं ठीक हूँ, राधिका ने हल्का मुस्कुराकर कहा। हालांकि उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन दिल में अभी भी यही ठेस थी कि उनके प्यार में क्या कमी रह गई थी जो आयशा उनके साथ खेल रही थी।
वहीं दूसरी तरफ इशिका और अभिमन्यु गोवा पहुंच चुके थे। वे पूरी सिक्योरिटी के साथ राजवंश विला आ रहे थे। वैसे तो मर्चेंट फैमिली के जाने के बाद उनके ऊपर किसी तरह का कोई खतरा नहीं था, लेकिन फिर भी अभिमन्यु इशिका को लेकर कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव हो रहा था। केशव भी उनके साथ था। उन्होंने राजवंश विला आने से पहले उन्हें बताया नहीं था, वो सरप्राइज देना चाहते थे। शाम के वक्त राधिका और वसुधा बाहर बगीचे में टहल रही थी, तो वहीं उर्वशी भी नकुल के साथ खड़ी उसे नायरा को लेकर बहस कर रही थी। नायरा भी छुपकर उनकी बातें सुन रही थी। कुल मिलाकर पूरी राजवंश फैमिली इस वक्त बाहर एरिया में मौजूद थी। जब अभिमन्यु की गाड़ी वहां आई तो सब एक साथ बाहर आ गए। वसुधा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। अभिमन्यु इशिका का हाथ पकड़कर उनकी तरफ बढ़ रहा था। वसुधा जल्दी से उनके पास गई और उन्हें गले लगाकर बोली, मेरे बच्चे सही सलामत यहां आ गए और मुझे क्या चाहिए? अब मैं कभी अपनी आंखों से दूर नहीं जाने दूंगी तुम दोनों को। आपके बिना रहना मुश्किल होता है दादी, सो डोंट वरी, हम कहीं नहीं जाएंगे, अभिमन्यु ने मुस्कुराकर कहा। उनकी बातचीत के दौरान नकुल भी वहां पर पहुंच चुका था। उसने इशिका को अभिमन्यु के साथ देखा तो गुस्से में उसका मुंह टेढ़े हो गए। इशिका राधिका के पास जाकर उसके गले लगी और बोली, माँ आप पूरी तरह ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ, पर तुम दोनों बहुत थके हुए लग रहे हो। इशिका तुम जानती हो ना, तुम्हें इस हालत में इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, राधिका ने उसे प्यार से कहा। वसुधा को अभी इशिका के प्रेगनेंसी के बारे में पता नहीं था। उसने बीच में पूछा, बहू तुम्हें कुछ हुआ है क्या जो तुम्हें इस हालत में इतना स्ट्रेस ना लेने की हिदायत दी जा रही है? वसुधा के पूछते ही अभिमन्यु और इशिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आखिर वसुधा की कब से इच्छा थी कि वो अभिमन्यु और इशिका के बच्चे को अपने गोद में खिलाएं। इससे पहले कि अभिमन्यु उसे इस बारे में बताता, एक और गाड़ी राजवंश विला के अंदर आई। वो एक लग्जीरियस रेड कार थी। वो गाड़ी राजवंश फैमिली की नहीं थी, इस वजह से उन सब का ध्यान उसकी तरफ चला गया। हैरानी तो तब हुई जब उस गाड़ी से बाहर पार्थ निकल कर आया। इशिका की आंखें बड़ी हो गई थी, उसने अभिमन्यु की तरफ देखा। अभिमन्यु भी इस मामले को समझ नहीं पा रहा था। वहीं पूरी राजवंश फैमिली के लिए पार्थ का चेहरा नया था। पार्थ सीधा वसुधा की तरफ बढ़ा और उनके पैर छुए। वसुधा ने हैरानी से पूछा, बेटा तुम कौन हो, मैं तुम्हें जानती हूँ क्या? पहले भी आ चुके हो क्या तुम जो मुझे याद नहीं आ रहा? नहीं, आज हम पहली बार मिल रहे हैं, पार्थ ने रहस्यमयी अंदाज में कहा। लेकिन डॉक्टर रायचंद आप यहाँ क्या कर रहे हैं, अभिमन्यु ने उसे घूरते हुए पूछा। उसे एक पल के लिए लगा कि कहीं वो इशिका के पीछे तो यहाँ नहीं आ गया। पार्थ ने अभिमन्यु की तरफ देखा और तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, अब ये कैसी बात कर रहे हो तुम अभिमन्यु, मैं अपने घर नहीं आऊँगा तो और कहाँ जाऊँगा? ये सिर्फ तुम्हारा ही नहीं मेरा भी घर है और मेरा पूरा नाम पार्थ राजवंश है। जैसे ही पार्थ ने अपना पूरा इंट्रोडक्शन दिया, उन सब की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं। वो सब नकुल को देखने लगे, जबकि नकुल मासूमियत से नामे सिर हिला रहा था। इस वक्त उसके जहन में एक ही सवाल था, क्या वो नकुल या नायरा की तरह ही उनका नाजायज बेटा तो नहीं था? लगता है आज का चैप्टर सबका इंट्रोडक्शन हो गया। आपको क्या लगता है, पार्थ का राजवंश फैमिली से क्या रिश्ता हो सकता है?